जरा एक शतरंज के खेल की कल्पना कीजिए.
अच्छा, शतरंज.
हाँ, मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो ना पूरी तरह से घिर चुका है. बोर्ड पर उसके सारे मोहरे खतरे में हैं. विरोधी बिल्कुल हावी हो रहा है और बाहर से देखने वाले हर इंसान को लग रहा है कि बस अब खेल खत्म होने वाला है.
एकदम पसीने छूटने वाली नौबत. राइट
राइट, बिल्कुल. लेकिन वो खिलाड़ी वो बिल्कुल शांत है. मतलब वो मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे अपनी हार नहीं बल्कि इस पूरी घेराबंदी के बीच ना हर अगली चाल में एक बहुत ही शानदार चेकमेट नजर आ रहा है.
वाकई ये एक बहुत ही सटीक और शक्तिशाली चित्र है, क्योंकि जब हम इतिहास के कुछ सबसे प्रभावशाली पलों का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि बाहरी परिस्थितियां और अंदरूनी नजरिया ये दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाओं में जा सकते हैं.
एग्जैक्टली.
और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा में हम लोग ठीक ऐसे ही एक ऐतिहासिक दस्तावेज और एक बेहद दिलचस्प इंसान के माइंडसेट को डिकोड करने वाले हैं.
हाँ, प्रेरित पौलुस की बात कर रहे हैं हम.
जी, हमारे पास डॉक्टर मैथ्यू एस हामन का एक बहुत ही गहन शोध है. ये फिलिपियों की किताब के अध्याय 1 आयत 18:20-26 पर आधारित है. और हमारा जो मिशन है आज वो ये समझना है कि कैसे, मतलब कैसे कोई इंसान अपने जीवन की सबसे खौफनाक परिस्थितियों में,
जैसे कि जंजीरों में जकड़े हुए होना,
हाँ, मौत की सजा का इंतजार करते हुए इतने भयानक समय में कोई एक अजेय नजरिया कैसे अपना सकता है.
मैं यही सोच रही थी.
और इस पूरे शोध की जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो ये है कि पौलुस यहाँ कोई दार्शनिक ज्ञान नहीं बांट रहे हैं जो मतलब किसी आराम कुर्सी पर बैठकर लिखा गया हो.
बिल्कुल नहीं.
हमें ना उस समय की वास्तविकता को समझना होगा. पहली सदी की रोमन जेल आज की तरह नहीं होती थी जहाँ कुछ बुनियादी सुविधाएं मिले.
आज की जेलें तो फिर भी बहुत अलग हैं. सही बात है. पौलुस एक रोमन सैनिक के साथ 24 घंटे लोहे की जंजीरों से बंधे हुए हैं. उनका जो भविष्य है वो पूरी तरह से रोमन सम्राट के हाथ में है. ये मौत के साए में लिखी गई एक वास्तविक डायरी जैसी है. और डॉक्टर हारमन का शोध हमें वो लेंस देता है जिससे हम देख सकें कि पौलुस इस भयानक स्थिति का मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं.
तो चलिए सीधे इस दस्तावेज के पहले बड़े दावे पर आते हैं जो सच कहूं तो पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है.
कौन सा दावा?
मतलब पौलुस इतनी गंभीर स्थिति में है लेकिन उनका दावा है कि वो मुक्त हो जाएंगे या उन्हें छुटकारा मिल जाएगा. अब अगर कोई व्यक्ति किसी काल कोठरी में बंद है और वो कहता है कि उसे छुटकारा मिलने वाला है तो कोई भी सामान्य इंसान तो यही सोचेगा ना कि उसे रिहा किया जाने वाला है, उसकी हथकड़ियां खुलने वाली हैं.
हाँ, स्वाभाविक है.
तो क्या पौलुस यहाँ सच में जेल से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं?
एक्चुअली सतह से देखने पर यह बिल्कुल स्वाभाविक निष्कर्ष लगता है, लेकिन जब हम डॉक्टर हामन के शोध के जरिए मूल ग्रीक भाषा की गहराई में जाते हैं तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है.
अच्छा,
कैसे? पौलुस यहाँ ग्रीक शब्द सोटेरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस शब्द का अनुवाद अक्सर मुक्ति या उद्धार के रूप में किया जाता है. अब सवाल यह है कि क्या यह हथकड़ियों से आजादी है या कुछ और?
अगर मैं उनकी जगह होती तो मेरी पहली प्राथमिकता तो हथकड़ियों से आजादी ही होती यार.
वही तो बात है, लेकिन पौलुस का जो पैटर्न है वो कुछ और ही इशारा करता है. डॉक्टर हामन 3 बहुत ठोस सबूत देते हैं इसके लिए.
ओके, पहला क्या है?
पहला ये कि उनके बाकी सारे पत्रों को अगर देखा जाए तो जहां भी उन्होंने इस सोटेरिया शब्द का इस्तेमाल किया है वो हमेशा आध्यात्मिक या शाश्वत उद्धार के संदर्भ में किया है. अगर उन्हें किसी शारीरिक खतरे से बचने की बात करनी होती तो उस वक्त की ग्रीक भाषा में इसके लिए और भी कई सटीक शब्द मौजूद थे.
ओह, मतलब उन्होंने जानबूझकर सोटेरिया को चुना.
बिल्कुल. और दूसरा सबूत यह है कि इस अंश में पौलुस जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही अंत समय वाली भाषा है.
अंत समय मतलब जजमेंट जैसी.
एग्जैक्टली. वो कह रहे हैं कि वो अंतिम दिन शर्मिंदा नहीं होंगे. अब एक इंसान जो शायद कल मार दिया जाएगा वो कल की चिंता छोड़कर दुनिया के अंत की चिंता कर रहे हैं.
लेकिन एक पल रुकिए, क्या ये सामान्य मानवीय स्वभाव यानी हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के बिल्कुल विपरीत नहीं है?
हाँ, बिल्कुल है.
मतलब कोई मौत की सजा का इंतजार कर रहा है तो उसकी पहली चिंता अपनी जान बचाना होगी. ये थोड़ा अव्यवहारिक नहीं लगता?
ये अव्यवहारिक लग सकता है अगर हम इसे सिर्फ भौतिक दुनिया के नजरिए से देखें, लेकिन पौलुस का नजरिया इस दुनिया की तात्कालिकता से बहुत आगे तक देख रहा है. वो अपनी वर्तमान स्थिति को एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय पैमाने पर तौल रहे हैं.
सही कह रहे हैं.
और यहीं पर डॉक्टर हारमन एक बहुत ही दिलचस्प साहित्यिक कड़ी जोड़ते हैं जो तीसरा सबूत भी है. पौलुस यहाँ अचानक से पुराने नियम की अय्यूब की किताब का संदर्भ दे रहे हैं।
अय्यूब वही व्यक्ति जिसकी कहानी में उसने अपनी दौलत, अपना परिवार, अपनी सेहत, मतलब सब कुछ खो दिया था।
बिल्कुल वही। डॉक्टर हार्मन बताते हैं कि पौलुस ने यहाँ ग्रीक भाषा के ठीक उन्हीं 5 शब्दों का इस्तेमाल किया है जो अय्यूब ने अध्याय 13 में कहे थे।
अच्छा।
हाँ, अय्यूब ने कहा था कि ये मेरी मुक्ति का कारण होगा। अब अगर हम अय्यूब की कहानी को याद करें तो जब वो ये बात कह रहा था तब वो शारीरिक कष्टों से मुक्ति की बात नहीं कर रहा था।
तो वो किस बारे में बात कर रहा था?
वो इस बात पर अड़ावा था कि जब अंतिम न्याय का दिन आएगा तो वो ईश्वर के सामने बेदाग खड़ा होगा। और पौलुस खुद को ठीक अय्यूब की स्थिति में देख रहे हैं।
ओह, अब मुझे ये समझ में आ रहा है। यानी पौलुस ये नहीं कह रहे हैं कि सीजर मुझे कल छोड़ देगा।
बिल्कुल नहीं।
वो ये कह रहे हैं कि चाहे सीजर मुझे मार भी दे, लेकिन जब अंतिम दिन आएगा तो मैं आध्यात्मिक रूप से सही साबित होंगी। मतलब उनका असली लक्ष्य शारीरिक आजादी है ही नहीं, बल्कि अपने विश्वास पर अंत तक टिके रहना है।
एकदम सही पकड़े आप। उनकी नजर रिहाई के कागज पर नहीं बल्कि उस अंतिम दिन पर है।
क्या बात है। लेकिन ये ना हमें एक और बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाता है।
कौन सा सवाल?
अगर उनका लक्ष्य आध्यात्मिक रूप से अपनी आखिरी सांस तक टिके रहना है तो कोई इंसान ये करेगा कैसे? मतलब चाहे कोई कितना भी मजबूत क्यों ना हो, मौत के डर और शारीरिक यातना के सामने इंसान कमजोर पड़ ही जाता है।
हाँ, वो तो है।
तो पौलुस खुद को टूटने से कैसे बचा रहे हैं?
ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। पौलुस को इस बात का पूरा एहसास है कि वो अपनी ही शक्ति या इच्छा शक्ति के दम पर इस विश्वास को नहीं बनाए रख सकते। इंसान की सहन शक्ति की एक सीमा होती ही है।
बिल्कुल।
तो डॉक्टर हार्मन समझाते हैं कि पौलुस यहाँ 2 चीजों पर पूरी तरह से निर्भर हैं।
ओके।
पहला, अन्य लोगों की उनके लिए की जा रही प्रार्थनाएं, और दूसरा, पवित्र आत्मा की मदद।
तो एक तरफ समुदाय की प्रार्थना और दूसरी तरफ ईश्वर की मदद। लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ कैसे काम कर रही हैं?
यही पर मूल ग्रीक लेख का एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरा व्याकरणिक तथ्य सामने आता है जिसे डॉक्टर हार्मन ने उजागर किया है।
अच्छा, व्याकरण का तथ्य।
हाँ, हम आमतौर पर प्रार्थना और आत्मा की मदद को 2 अलग अलग चीजें मान लेते हैं, लेकिन ग्रीक में लिखते समय पौलुस ने प्रार्थना और मदद इन दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए केवल एक ही निश्चित उपपद का इस्तेमाल किया है।
एक ही उपपद? मतलब अंग्रेजी के द जैसा कुछ?
एग्जैक्टली, एक ही द का इस्तेमाल किया दोनों के लिए।
तो इससे अर्थ में क्या बदलाव आता है?
ग्रीक व्याकरण का नियम है कि जब 2 अलग अलग संज्ञाओं को एक ही उपपद के तहत रखा जाता है तो इसका मतलब यह है कि वे दोनों अलग अलग दिशाओं में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे एक एकीकृत इकाई बन गए हैं, एक यूनिफाइड होल।
समझ रही हूँ।
वे एक ही प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका सीधा अर्थ ये है कि जब लोग प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना के सीधे परिणाम के रूप में आत्मा की मदद मिलती है। ये 2 अलग अलग घटनाएं नहीं है।
वाकई, अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी के एक उदाहरण से समझने की कोशिश करूं तो ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे हम किसी कार की कल्पना करें।
अच्छा, कार का उदाहरण बताइए।
मतलब लोगों की प्रार्थनाएं उस कार की चाबी की तरह है और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन उस कार का इंजन है। अब तकनीकी रूप से देखें तो चाबी और इंजन 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं।
बिल्कुल।
एक हाथ में पकड़ी जाती है, दूसरा बोनेट के नीचे होता है। लेकिन अगर गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाना है तो वे एक एकीकृत इकाई के रूप में काम करते हैं। मतलब आप चाबी घुमाते हैं और इंजन तुरंत प्रतिक्रिया देता है और आपको आगे ले जाता है। एक के बिना दूसरा अधूरा है।
क्या बात है, ये उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। पौलुस का पूरा आत्मविश्वास इसी बात पर टिका है कि चाबी और इंजन एक साथ काम कर रहे हैं।
हाँ, उन्हें पता है कि फिलिपियों के लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
बिल्कुल, और इसी कारण ईश्वर की आत्मा उन्हें वो शक्ति दे रही है जो उनकी अपनी नहीं है।
और इसी हिम्मत के सहारे ना वो उस मशहूर और विरोधाभासी निष्कर्ष तक पहुँचते हैं जो इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा है।
आप उस लाइन की बात कर रहे हैं ना, जीना मसीह है और मरना लाभ।
जी बिल्कुल वही।
सच कहूं तो जब भी कोई ये वाक्य सुनता है तो ये बहुत काव्यात्मक लगता है।
पोएटिक सा।
हाँ, सुनने में अच्छा लगता है।
लेकिन इसका व्यवहारिक मतलब समझना थोड़ा मुश्किल है। मतलब कोई इंसान मौत को लाभ कैसे कह सकता है?
डॉक्टर हार्मन बताते हैं कि मूल ग्रीक में ये वाक्य और भी ज्यादा संक्षिप्त और तीखा है। वहां लिखा है, जीना मसीह, मरना लाभ।
बस इतना ही?
बस इतना ही। इसमें कोई अतिरिक्त क्रिया या घुमाववार शब्द नहीं है। ये एक कहावत की तरह सीधा वार करता है।
लेकिन यहाँ जीने का क्या मतलब है? मतलब क्या वो सिर्फ सांस लेने की बात कर रहे हैं या किसी दर्शन को मानने की? क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि किसी धर्म या दर्शन को मानने का मतलब है उसके बारे में बहुत सारी बौद्धिक जानकारी होना, सारे नियम कानून पता होना।
ये बहुत अच्छा सवाल है। पौलुस के अन्य लेखों जैसे गलातियों या कुरिन्थियों के पत्रों को अगर डॉक्टर हामन के नजरिए से देखें तो यहाँ जीने का अर्थ सिर्फ किताबी ज्ञान या बौद्धिक सहमति बिल्कुल नहीं है।
तो फिर क्या है?
यह एक बहुत ही गहरा व्यक्तिगत संबंध है। इसका मतलब है कि मसीह को पाना और जानना इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि उसके सामने दुनिया की बाकी सभी चीजें, चाहे वे कितनी भी अच्छी, सुखद या जरूरी क्यों ना हो, कोई मायने ही नहीं रखती।
मतलब सब कुछ पीछे छूट जाता है।
हाँ, उनका पूरा अस्तित्व इसी एक केंद्र के इर्द गिर्द घूम रहा है।
ये एक बहुत ही शक्तिशाली माइंडसेट है। और सच बताऊं, ये बात मुझे विश्वास या फेथ के पूरे कंसेप्ट पर सोचने को मजबूर करती है।
कैसे?
मतलब हम आम तौर पर अपनी जिंदगी में जब भी किसी मुश्किल में फंसते हैं तो हमें लगता है कि हमारे अंदर विश्वास की कमी है।
हाँ, हम खुद को कोसने लगते हैं।
बिल्कुल, हमें लगता है कि हमें अपने अंदर और अधिक विश्वास पैदा करने की जरूरत है, जैसे कि हम किसी खाली बर्तन को भरने की कोशिश कर रहे हों।
और यहीं पर डॉक्टर हारमन एक बहुत ही जरूरी सुधार करते हैं हमारी सोच में। हम अक्सर विश्वास को एक मात्रा या वॉल्यूम के रूप में देखते हैं।
हाँ, जैसे ग्लास में पानी।
एग्जैक्टली, जैसे कि विश्वास किसी ग्लास में भरा हुआ पानी है और अगर सामने पहाड़ जैसी मुश्किल आ गई है तो हमें उस ग्लास में और पानी डालना होगा। लेकिन डॉक्टर हारमन याद दिलाते हैं कि विश्वास की मात्रा मायने नहीं रखती।
वाकई? तो अगर मात्रा नहीं तो क्या मायने रखता है?
मायने ये रखता है कि आपका विश्वास टिका किस पर है। वो राई के दाने का उदाहरण देते हैं।
राई का दाना जो बहुत ही छोटा होता है।
जी, लगभग ना के बराबर, लेकिन फिर भी उसमें पहाड़ हिलाने की बात कही गई है। इसका कारण यह है कि महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि एक इंसान के भीतर कितना विश्वास भरा है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि जिस पर विश्वास किया जा रहा है वो कितना सक्षम है।
ओ, ये बहुत गहरी बात है।
हाँ, पौलुस का विश्वास इसलिए इतना मजबूत नहीं था क्योंकि उन्होंने अपने अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वो जानते थे कि उनका आधार, उनका स्रोत असीमित रूप से सक्षम है।
सच में ये नजरिया ना बहुत सी चिंताओं को दूर कर देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी को भी अपने भीतर कुछ कृत्रिम रूप से पैदा करने या खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ उस स्रोत की सक्षमता को पहचानना है।
बिल्कुल सही कहा आपने।
खैर, चलिए इस चर्चा को वापस उस रोमन जेल की कोठरी में ले चलते हैं। अब पौलुस के सामने ना एक बहुत ही अजीब सी दुविधा खड़ी है।
हाँ, वो विन विन वाली स्थिति है।
जी, एक तरफ अगर वो बरी हो जाते हैं तो वो जीना मसीह है वाले मार्ग पर चलेंगे और अपना काम जारी रखेंगे, और दूसरी तरफ अगर सीजर उन्हें मृत्यु दंड दे देता है तो वो उनके लिए लाभ है।
सही बात है।
तो जब आपके सामने दो इतने शानदार विकल्प हों तो इंसान चुनाव कैसे करे?
ये वास्तव में एक अनोखी दुविधा है। डॉक्टर हामन इसे बहुत ही स्पष्टता से समझाते हैं। हम लोग अपनी जिंदगी में ज्यादातर फैसले जीत या हार के आधार पर लेते हैं।
हाँ, या तो फायदा होगा या नुकसान।
लेकिन पौलुस के लिए ये जीत या हार की स्थिति है ही नहीं, ये जीत या और भी बड़ी जीत की स्थिति है।
अच्छा, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। दोनों जीत कैसे हैं?
देखिए, अगर पौलुस बरी हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो नई जगहों पर जाएंगे, सुसमाचार का प्रचार करेंगे और बहुत से लोगों को जीवन बदलेगा। ये एक बहुत बड़ी जीत है।
बिल्कुल, उनके मिशन के लिए।
हाँ, लेकिन अगर उन्हें मृत्युदंड मिलता है तो उनकी सारी शारीरिक तकलीफें, वो लोहे की जंजीरें, सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और वो सीधे उस ईश्वर के साथ होंगे जिसके लिए वो जी रहे हैं। पौलुस खुद मानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से ये उनके लिए कहीं ज्यादा बेहतर है।
यानी मरने में उनकी सबसे बड़ी जीत है।
जी, ये उनके लिए सबसे बड़ी जीत होगी।
फिर भी वो एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वो जीवित रहेंगे। वो ये चुनाव कैसे करते हैं जब मरना ज्यादा बेहतर है?
वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि उनका जीवित रहना अन्य लोगों की प्रगति और आनंद के लिए अधिक आवश्यक है।
मतलब दूसरों के लिए।
हाँ, वो जानते हैं कि व्यक्तिगत शांति और परम आनंद उन्हें मृत्यु के बाद ही मिलेगा, लेकिन फिर भी वो दूसरों की खातिर इसी मुश्किल और दर्दनाक दुनिया में रुकना चुनते हैं। और इस बात को और गहराई से समझाने के लिए ना डॉक्टर हारमन एक साहित्यिक तकनीक का जिक्र करते हैं।
कौन सी तकनीक?
इसे इंक्लूसियो कहा जाता है।
इंक्लूसियो, ये शब्द थोड़ा तकनीकी लगता है। ये किस तरह काम करता है?
आप इसे एक साहित्यिक सैंडविच या एक ब्रैकेट की तरह समझ सकते हैं।
ओके, सैंडविच।
प्राचीन काल में लेखकों के पास आज की तरह बोल्ड टेक्स्ट, हाइलाइटर या इटैलिक्स जैसी चीजें तो होती नहीं थी।
हाँ, वो तो है।
तो वे किसी महत्वपूर्ण बात पर जोर देने के लिए क्या करते थे? वे एक विचार से शुरुआत करते थे, बीच में बहुत सी बातें लिखते थे और फिर ठीक उसी विचार या शब्द के साथ उस हिस्से को खत्म करते थे।
अच्छा, तो पौलुस ने यहाँ क्या किया?
पौलुस ने इस खंड की शुरुआत आयत 12 में सुसमाचार की प्रगति की बात से की थी और अब अंत में आयत 25 में वो फिर से फिलिपियों के विश्वास में प्रगति की बात कर रहे हैं।
यानी वो पूरे विचार को एक घेरे में बांध रहे हैं।
बिल्कुल, ये इंक्लूशो ये साबित करता है कि पौलुस का दिमाग अपनी जंजीरों पर नहीं बल्कि दूसरों की भलाई और उस बड़े उद्देश्य के इर्द गिर्द घूम रहा है।
वाकई अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें ना तो ये बात काफी हैरान करने वाली है।
वो कैसे?
मतलब आज के युग में हम हर तरफ सेल्फ केयर, अपनी मेंटल हेल्थ सबसे पहले और अपने फायदे को प्राथमिकता देने का मंत्र सुनते हैं।
हाँ, आज का कल्चर ही ऐसा है।
और यहाँ एक इंसान है जो भयानक तकलीफ में है, मौत के करीब है और वो अपने सबसे बड़े व्यक्तिगत लाभ को यानी मरने के बाद की शांति को स्वेच्छा से ठुकरा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि वो दूसरों के संघर्ष में उनके साथ खड़ा रह सके। ये एकदम विपरीत नजरिया है।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं और यही वो चीज है जो इस पूरे शोध को महज एक इतिहास के पन्ने से निकालकर आज के लिए इतना प्रासंगिक बना देती है। पौलुस ने दुनिया को देखने का अपना एक चश्मा बना लिया है और वो चश्मा है उस बड़े उद्देश्य की प्रगति। वो अपने वर्तमान, अपने अतीत और भविष्य के हर डर का मूल्यांकन सिर्फ इसी लेंस से कर रहे हैं।
तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटना चाहें, मतलब ये ऐतिहासिक और व्याकरणिक ज्ञान बहुत गहरा है, लेकिन सवाल ये है कि एक आम इंसान इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारे।
डॉक्टर हार्मन ने इसके लिए एक बहुत ही व्यावहारिक चार सूत्र अनुप्रयोग दिया है जिसे वो फोरफोल्ड ब्रिज कहते हैं।
अच्छा, चार सूत्र, चलिए इन चारों बिंदुओं पर बात करते हैं।
पहला बिंदु है ये मानना कि ईश्वर नियंत्रण में है।
ये कहना तो आसान है लेकिन जब जिंदगी में उथल पुथल मच रही हो तब ऐसा मानना बहुत मुश्किल होता है।
बिल्कुल, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पौलुस ये बात किसी आरामदेह जगह से नहीं कह रहे थे।
हाँ, वो जेल में थे।
वह रोमन सैनिक से बंधे हुए ये मान रहे थे कि सम्राट सीजर नहीं बल्कि ईश्वर नियंत्रण में है।
सही बात है। और दूसरा बिंदु?
दूसरा बिंदु है वास्तव में इस बात पर गहराई से विश्वास करना कि जीना मसीह है और मरना लाभ। इसे सिर्फ एक टी शर्ट पर लिखे नारे की तरह नहीं दोहराना बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के फैसलों में से उतारना बहुत जरूरी बात है। और तीसरा बिंदु है?
तीसरा बिंदु है महिमा की लालसा करना, यानी अपनी वर्तमान परिस्थितियों के बीच भी उस बड़े उद्देश्य और ईश्वर की महिमा की ओर देखना।
अगर हम इसे आज के किसी व्यवहारिक संकट से जोड़ें, मतलब मान लीजिए किसी इंसान को अचानक कोई गंभीर मेडिकल डायग्नोसिस मिलता है या कोई अपने व्यवसाय में पूरी तरह दिवालिया हो जाता है,
बहुत ही कठिन परिस्थितियां।
हाँ, तो ऐसी स्थिति में महिमा की लालसा करना कैसा दिखेगा?
ऐसे समय में स्वाभाविक प्रतिक्रिया डर और निराशा ही होती है, लेकिन पौलुस का नजरिया ये सिखाता है कि उस अस्पताल के बिस्तर पर या उस खाली बैंक अकाउंट के सामने भी इंसान ये सोच सकता है कि मैं इस मुश्किल का सामना जिस गरिमा और विश्वास के साथ करूंगा वो शायद किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए।
मतलब अपने चरित्र को निखारने का मौका है।
एग्जैक्टली।
और यही हमें डॉक्टर हार्मन के चौथे और अंतिम बिंदु की ओर ले जाता है, ये विचार करना कि हमारी वर्तमान कठिनाइयों का उपयोग किस बड़े उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
वाकई ये आखिरी बात बहुत ही गहराई से सोचने वाली है।
हाँ बिल्कुल,
हम इंसान अक्सर अपनी बीमारियों को, अपने आर्थिक संकटों को या आपसी विवादों को ना अपनी कहानी में एक रुकावट मान लेते हैं। हमें लगता है कि हमारी जिंदगी वहीं रुक गई है, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो।
सही कहा।
लेकिन अगर हम पौलुस के इस ऐतिहासिक नजरिए को अपना लें तो क्या ये संभव नहीं है कि हमारी वे सबसे डरावनी चुनौतियां वास्तव में कोई रुकावट ना हो?
ये नजरिया तो पूरी कहानी ही बदल देता है।
बिल्कुल, क्या पता वे रुकावटें किसी बहुत बड़े अनजान उद्देश्य की शुरुआत हो, जैसे शुरुआत में हमने उस शतरंज के खिलाड़ी की बात की थी।
हाँ, जिसे हार में भी चेकमेट दिख रहा था।
जी, वो खिलाड़ी बोर्ड पर अपने मोहरों को घिरता हुआ देखकर घबराता नहीं है बल्कि उसी घेराबंदी के बीच जीत का एक नया रास्ता खोज लेता है।
क्या बात है।
अगर हम अपनी जिंदगी की हर अनिश्चितता, हर डर और हर संघर्ष को इसी तरह जीत में बदलने वाला वो लेंस पहन लें तो जरा सोचिए कल सुबह जब हम उठेंगे और अपने सबसे बड़े डर का सामना करेंगे तो वो डर हमें कैसा दिखेगा?
एक अलग ही नजरिए से दिखेगा।
शायद हम पाएंगे कि वो डर असल में एक दरवाजा है।
बहुत ही सटीक और विचार करने योग्य बात है।
और इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस दस्तावेज और इस नजरिए ने वाकई हमें सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है।